نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد اور تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے. کون ہے وہ؟ لا الہ الا ہوا, نہیں ہے کوئی مگر وہی معبود. الرحمن الرحیم, بہت رحم کرنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 163 ایک لائن میں پوری ہونے والی آیت ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی توجہ اپنی طرف دلاتے ہیں. پیچھے بھی باتیں ہیں, آگے بھی باتیں ہیں, توحید کے دلائل بھی ہیں, قیامت کے دن ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہے کہ جو اپنے پیارے یا جن کے لیے ساری زندگی ان کی نیاز مندیاں کرتے رہے کہ ان کو خوش کر دیں, ان کو خوش کر دیں, قیامت کے دن فلاں کام آئے گا, فلاں کام آئے گا, لیکن اس دن کوئی بھی کام نہیں آ رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہکم الہ واحد, تمہارا رب تو ایک ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ضرورت ہر انسان کو ایسے ہی ہے جیسے آکسیجن کی ضرورت میرے آپ کے لنگز کو, اور کھانے کی ضرورت میرے آپ کے سٹمک کو, اور خوبصورت مناظر کی طلب ہماری آنکھوں کو ہے, اور رس بھری آواز کی طلب ہمارے کانوں کو ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کا مختلف کام ہے, ہر ایک اپنے اپنے مطابق کام کرتا ہے. آکسیجن جاتی ہے تو لنگز کا کام شروع ہو جاتا ہے, کھانا جاتا ہے تو معدے کا کام شروع ہو جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کا کیا کام ہے. 100 میں سے ایک بات, اللہ سے پیار کرو. دل کی ہر دھڑکن یہ بول بول کے پکارتی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. سورۃ بقرہ آیت 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی اور شریک بنا لیتا ہے. بہت سارے شریک ہیں, پہلے دور میں بت کی صورت میں بت شریک نظر آتے تھے, قبروں کے اندر سوئے ہوئے یا فوت شدہ بزرگ نظر آتے تھے. لیکن حقیقت ہے کہ شرک صرف پتھر کے بت کا نہیں ہے, یا قبر میں گئے ہوئے بزرگ کے آگے سجدے کرنے یا جھکنے کا نام شرک نہیں. قرآن نے تو اس بات کی خبر دے دی کہ سب سے بڑا بت جس کو انسانیت نے پوجا, افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, سورۃ فرقان میں بھی ہے اور بھی جگہ ہے کہ سب سے بڑا بت جس کو کوئی انسان پوجتا ہے تو اس کا نفس ہے. نفس انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے. اگر آج کا دور دیکھیے تو اگر ابراہیم علیہ السلام آج کے دور میں دنیا میں بھیجے جاتے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی بت توڑنے کی. ان کو آج جو کام دیا جاتا وہ انسانوں کے نفسوں کے بتوں کو توڑنے کا کام تھا. بات سچ ہے لیکن کڑوی ہے کہ آج کے دور میں تو تربیت کا انداز ہی خود کو خدا بنانے کا ہے. خود کو پوجو, تم, تمہاری مرضی, میں, آئی ایم, مائی, مائن. آپ دیکھیے چھوٹے سے بچے کو ماں کانشیسلی اور کبھی ان کانشیسلی اس چیز کا عادی کر دیتی ہے کہ تم بہت اہم ہو. کیا کھاؤ گے, میرا بیٹا کیا پہنے گا, میں بیٹے کے لیے کیا بناؤں. یعنی یہ پیار والے جملے ہیں, ممتا کا رس کھلتا ہے اس میں. اس میں چاہت بھی ہے اور اس میں باپ کی آسودگی بھی دکھتی ہے کہ باپ کماتا ہی اس لیے کہ بچے کے لیے 6 قسم کے سیریل لائے, اور بچہ رات کو دن میں جب جس چیز کی فرمائش کریں. تو آخر ہم کماتے کس لیے ہیں؟ آج کے دور میں عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کر دینا عین عبادت ہے, اور ان کا حق ادا کیا جاتا ہے, اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, وی ہیوز, تو ہیوز ہیں تو ان کو تو کرنا ہے. لیکن اس کا جو ایک الٹیمیٹلی نقصان ہو رہا ہے, جس کا آپ اور میں خود بھی مشاہدہ ارد گرد کر سکتے ہیں, کہ جتنا ماں باپ نے اپنے بچوں کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا اتنا بچوں نے ماں باپ کی بات کو چھوڑنا شروع کر دیا. سچ آپ سب اپنے اوپر لیجئے, آج سے 20, 25, 30, 40 سال, 50 سال پیچھے چلے جائیے, کیا آپ کی ہر فرمائش پوری ہوتی تھی؟ آپ سے پوچھ کے گھر میں کھانا پکتا تھا؟ آپ کی ماں الماری کھول کے پوچھتی تھی بیٹا کیا پہنو گے, اور آپ کی ماں آپ کو گروسری سٹور پہ لے کے جا کے کہتی تھی بیٹا جو لینا لے لو؟ نہیں کرتی تھی. تو کیا ظالم تھے وہ؟ اور کیا ہمارے سب کے دادا دادی یا جو بھی اس نسل کے لوگ تھے وہ غریب تھے, کروڑ پتی تھے؟ अरबपति थे, लेकिन ये तसव्वुर नहीं था कि बच्चे की हर बात मानी जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि हम मसरूफ़ हो गए, हमारे पास वक्त नहीं रहा, तो फिर हमने अपनी कमी कागज़ के नोटों से और ख्वाहिशों से पूरी की। एक माँ का शिकवा है अपने शौहर के बारे में, कहती है कि मेरे शौहर बच्चों को टाइम नहीं देते, कमाते जो बहुत है माशाल्लाह, और फिर ज़ाहिर है ऐसे लोग जिनके बिज़नेस है उनकी मीटिंग्स भी होंगी, डिनर्स भी होंगे, और उनका आउटडोर सरगर्मियाँ भी उनकी होती हैं, तो टाइम नहीं देते, तो फिर क्या होता है? मैंने कहा फिर क्या होता है? कहती मैंने कहा हुआ कि संडे को अपने बच्चों को टाइम देना है और ये और वो, तो करते क्या हैं, जो ही संडे को घर होते हैं बच्चों की उंगली लगाते हैं, उनको ग्रोसरी स्टोर ले जाते हैं, इतने ज़्यादा चॉकलेट बिस्किट जो बच्चे कहते देते लेते जाते हैं, तो बच्चों को दिला कर चलो बेटा अंदर जाओ मैं आता हूँ, बच्चे वो कागज़ के रैपर्स में खुश और मियाँ साहब बाहर से चले जाते हैं, मेरी आज मीटिंग है मेरी उधर है। यदि बहुत सारे लोगों ने आज ये किया कि आज हमने अमूमन ये सोच लिया कि हम अपने बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों से बहलाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही खुशी का सामान बनेंगे, लेकिन नुकसान क्या हुआ कि हमारे बच्चों में शुरू से ही मादा परस्ती आ गई। ये जो दिल है ना, इसकी हर धड़कन ये पुकार पुकार के कहती है कि मुझे अल्लाह से प्यार है, मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ। आप देखिए कि कभी आप स्टेथोस्कोप यूज़ करके सीने के अंदर धड़कते हुए दिल को देखिए, तो दिल की अंदर से एक आवाज़ अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आती है। तो हमें अल्लाह ने पैदा क्यों किया कि मुझसे प्यार करो? वल्लज़ी नामनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, और ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत में शदीद होते हैं। अब आप सब ने ये बातें बहुत दफ़ा सुनी है, मुझे अल्लाह से प्यार है नहीं है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत है और आप मेरी ज़िंदगी में क्या हैं। मैंने सोचा कि आज हम लेक्चर से ज़्यादा थोड़ा सा एक गुफ्तगू वाला अंदाज़ इख्तियार करते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल शेयर करती हूँ जिससे आपको मुझे मोहब्बत का मतलब समझ आएगा। बहुत सिंपल सी एक कहानी सी है, छोटी सी। टॉपिक इसका है मुझे आपसे मोहब्बत है। आप भी कह दें मुझे आपसे मोहब्बत है, इसको इंग्लिश में कहती तो सबको समझ आना था आई लव यू, अरबी में कह दूँ तो इन्नी ओहिब्बुक फिल्ला या ओहिब्बुक कुन्ना फिल्ला, आप सबसे लकली प्यार है। लेकिन आप देखिए कि ये एक सच्ची कहानी है, जो लिखने वाले कहते हैं कि उन्होंने थोड़े बहुत इसको एक हिस्टोरिकल रंग देने में चेंज किया, अदरवाइज सच है। और उनका मुतालबा क्या है कि इसको दिल की आंखों से पढ़िए और फिर देखिए कि ज़िंदगी में कामयाबियों का नुस्खा क्या है। ये लिखते हैं कि मैंने ज़िंदगी में तुम्हें बहुत खुशकिस्मत सआदतमंद पाया है, क्या तुम वो अमल बतला सकती हो जिसने तुम्हें बुलंदियों के मीनार पर ला बिठाया है? क्या तुम मेरी रहनुमाई कर सकती हो? मरियम से इसकी परेशान हाल दोस्त पूछ रही थी, यानी एक सहेली है, वो अपनी दूसरी दोस्त को कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खुशियों वाली है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो और तुम सक्सेसफुल पर्सन हो, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी कामयाबियों की वजह क्या है? अब जवाब सुनिए दोस्त का, कहती है मैं बस एक ही अमल जानती हूँ। वो काफ़ी देर बाद गोया हुई, बतलाओ ना, वो इल्तजा वाली नज़रों से बोली। अब एक दोस्त कह रही है कि मेरे पास सिर्फ एक गोर है और जिसने मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भरा। मैं चंद सेकंड खामोश रहती हूँ, आप अपने जहन से सोचिए वो गुर क्या होगा। खूबसूरत बहुत होगी और ख़ूबसूरत लोग खुशकिस्मत होते हैं, चलिए ये भी नहीं। बहुत दौलतमंद होगी तो पैसे से सब कुछ खरीद लेगी, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह वाली होगी तो अल्लाह वाले तो बेचारे वैसे ही कोई किसी ना जोगे के हैं, ये तो इस कुर्सी में हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होगी, लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करती होगी जी, अल्लाह की रजा में राजी होगी। चलिए सुनिए, अब यहाँ से सुनिए, और आप में से जिन लोगों की या जिन सिस्टर्स की नई नई ज़िंदगी शुरू हुई है, क्योंकि ये हकीकत यकीन करें बूढ़े होकर समझ आए तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती। अब ये दोस्त अपनी कामयाबी की कहानी सुनाती है, कहती है कि ये मेरी शादी से एक रात कबल की बात है। मैं ईशा की नमाज के बाद बैठ गई और अपने अल्लाह के आगे हाथ फैला चुकी थी। मैंने इससे एक अहद किया था, मैंने कहा था या रब्बी मैं आपकी मोहब्बत को फ़ायक तर रखूँगी, यानी प्रायोरिटाइज करूँगी, हर चीज़ से ऊपर आपकी मोहब्बत होगी और बुलंद तर रखूँगी हर चीज़ से ऊपर। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत आप और सिर्फ आपसे है, यानी शादी से पहले लोग तो पता नहीं उस दिन क्या और फिक्रों में होते हैं। इसने अल्लाह से कहा कि मेरी ज़िंदगी शुरू हो रही है तो मैं आज आपसे अहद करती हूँ कि मैं अपने हर रिश्ते पर, हर जिम्मेदारी, हर चीज़ पर آپ کی محبت کو فوقیت دوں گی۔ میں شادی کے بعد جس بھی انسان سے حسن سلوک کروں گی بس وہ آپ کے لیے ہوگا۔ اللہ کرے شادی جس بچی کی ہونی ہے وہ یہ جملہ سن لے۔ یقین کیجئے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شادی زندگی کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ آپ کا ایک پاؤں ایک گاڑی میں اور ایک پاؤں دوسری گاڑی میں ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی بچیوں کی شادیوں کے موقع پہ کن کن تفکرات کا شکار ہوتے ہیں، پہنے گی کیا، اوڑھے گی کیا، لگے گی کیسی، کپڑے کدھر، زیور کدھر، جوتی کدھر، کوئی چار چائنیز ڈشیں سکھا دو، کوئی دو چار الٹی سیدھی بیکنگ کی چیزیں سکھا دو، عزت محبت ہوگی، اتنے بڑے گھر میں جا رہی ہے عزت کا مسئلہ، یہ کچھ ہوتا ہے۔ پہلے مائیں اور طرح سے ذرا سوچتی تھیں، وہ تو ہر میرے والے 15 سال کے بعد تانا ملنا شروع ہو جاتا تھا کہ آگے جا کے باتیں کراؤ گی، ماں کو باتیں کرانی ہے، ایسی تھا نا۔ آج تھوڑا سا ماڈرن انداز ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایک جملہ، آپ خود بھی چاہے آپ کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، یا آپ کاروبار میں کہیں بہت اوپر جا چکے ہیں، یا آپ کی زندگی کا آغاز ہے، ہر انسان کی یہ کامیابی کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی محبت کو اتنا اوپر رکھے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، میں کسی سے پیار کروں گی تو اللہ کے لیے، اور کوئی میرا کتنا پیارا کیوں نہ ہو، میرا دل روئے اس کے پیار میں، لیکن اگر وہ رب کی نافرمانی کرے گا تو میں اس کی بات نہیں مانوں گی۔ یقین کیجئے، سینے پہ پتھر رکھنے سے مشکل یہ بات ہے۔ کسی سے اللہ کے لیے پیار کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کا پیار دلوں میں ڈال بھی دیتا ہے۔ سات بیگانہ اپنا لگتا ہے۔ بلال حبشی کون تھے؟ نہ قریشی تھے، نہ مکی تھے، کالے رنگ کے تھے، اجنبی تھے، موٹے ہونٹوں والے تھے، لیکن جب کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے تو کتنے حسین لگتے تھے۔ یاد رکھیے، جملہ لکھ لیں، کسی سے اللہ کے لیے پیار کرنا بہت آسان ہے، لیکن کسی سے اللہ کے لیے بغض رکھنا بہت مشکل ہے، اور یہ اس وقت مشکل تر سے ترین ہو جاتا ہے جب آپ کے اپنے ہوں۔ اللہ نے 9 رشتوں کی بات کی ہے سورۃ توبہ میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے کنبے، قبیلے، برادریاں، خاندان، گھر، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہادن فی سبیلہ، اگر وہ تمہیں پیارے ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اس کے راستے کی جد و جہد سے، تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یاد رکھیے گا، آج کے دور کا ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ایشو، ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنوں کو ناراض نہیں کر سکتے، اور اس سے زیادہ بڑھ کے شرک اور کیا ہوگا۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کو ناراض نہیں کر سکتی، یہ میرا بچہ ہے، اس کی خوشی، یہ میری بچی ہے، یہ میرا سسرال، سسرال کے ساتھ تو سانس ہی کھنچ جاتی ہے، واللہ ہی جھوٹ نہیں کہتی۔ کئی لوگوں کے سانس کا تعلق ان کی ساس کے ساتھ ہوتا ہے، ساس آ جائے تو سانس نہیں آتی۔ ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ اوپر ایک ہستی ہے۔ تو بات کر رہی تھی کہ اس لڑکی نے کہا کہ اب میری شادی ہو رہی ہے، میں جس سے بھی حسن سلوک کروں گی۔ آپ دیکھیے، شادی نئے رشتوں کا ایک بندھن ہوتا ہے، بہت سارے جوڑ بنتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ذرا اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، پھر ہم باتیں کرتے ہیں اپنی بھی انشاءاللہ۔ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ، میں جس سے بھی محبت کروں گی آپ کے لیے کروں گی، اور دوسری بات، میں کسی انسان سے کچھ چاہوں گی نہ امید رکھوں گی۔ انسان کچھ دے نہیں پاتے یا دے نہیں سکتے، جملہ نوٹ کرے آپ نے، یا تو دے پاتے ہی نہیں ہیں، ہوتے ہی کوئی نہیں ان کے پاس، تو یا دے ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا میں لوگوں سے احسان کرنے کے بعد ان کی جانب کبھی نہ دیکھوں گی۔ عموماً لڑکیاں شادی کے بعد کن کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ ساس کی طرف۔ تعریف کریں، بڑی اچھی بہو آئی ہے، اس نے تو آتے ہی گھر سنبھال لیا، یہ تو بڑی ایکسپرٹ ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، ساس سسر کی خدمت کرنا عین عبادت ہے۔ نندوں، دیوروں، جیٹھوں، گھر کے جو نئے رشتے، اور ایون ہر روپ میں ہمارا دوسروں سے ملنا، یہ ہمارا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے تعلق کی دلیل ہے۔ لیکن نیت کیا ہے؟ ساس کو خوش کرنا کہ ساس کے رب کو خوش کرنا؟ شوہر کو خوش کرنے کے لیے ماں کو اس کی دیکھنا، یا شوہر کے رب کو خوش کرنے کے لیے اس کی ماں کو دیکھنا؟ اتنی فائن لائن ہے۔ آج کل تو ویسے بہت ساری بچیاں اس سے آزاد ہیں، وہ کہتے ہیں ہو کیئرس، تم کر لو، ہمیں تو یہ پتہ ہے سسرال کے تو حقوق ہی کوئی نہیں ہے، और अपनी माँ को खुद पाल लो, हम तो नहीं कर सकते। ये आज की चंद एक बिगड़े हुए जहन की पैदावार मैंने बताई है, लेकिन अमूमन हमारे या स्पेशली हमारे पंजाब के कल्चर में बच्चियों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि ससुराल में जाकर काम करना, खिदमत करना, ऐसी बातें करते हैं ना। यानी मैं अच्छे गुमान के साथ कह रही हूँ कि आप सब जिन फैमिलीज से माशाल्लाह ख़ानदानी लोग हैं, फैमिलीज़ में हैं, आप सब अपनी बच्चियों, बेटियों, पोतियों, नवासियों को एक ही पैगाम देंगे कि बेटा वहाँ जाके इज्जत करना, खिदमत करना, ऐसे ही है ना। खिदमत में अज़मत, और कहते हैं ना, लेकिन यहाँ मोटिव देख लीजिए, करना किसके लिए? अल्लाह के लिए। जब हम गैर अल्लाह से कोई उम्मीद रखते हैं ना, अल्लाह हमारे मुंह पे मारता है, और फिर इतनी ज़ोर की ठोकर पड़ती है हमें। हम समझ रहे होते हैं हमने अल्लाह के लिए किया था, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं किया था। कभी तारीफ़ के लिए कर रहे होते हैं, कभी इम्प्रेस करने के लिए कर रहे होते हैं, कभी दूसरी भाभी से तकाबुल में कर रहे होते हैं कुछ, कभी ये तमगा लेना चाह रहे होते हैं कि मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाए। तो इस बच्ची ने क्या कहा कि मैं किसी से कुछ नहीं लूँगी इसके बदले में, ना उम्मीद रखूँगी। इंसान कुछ दे नहीं सकते, ना दे पाते हैं, लिहाजा मैं लोगों से एहसान करने के बाद इनकी जानिब कभी देखूँगी भी नहीं, आपकी मोहब्बत ही अपने दिल में बसाए रखूँगी। किसकी? अल्लाह की मोहब्बत। मरियम बोल रही थी और वजीहा यानी जो उसकी दोस्त थी दम साधे सुन रही थी कि भाई ये कौन सा अंदर से गुर निकला, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी स्किल तो नहीं है, लेकिन देखिएगा अभी स्किल से फ़ायदे क्या होते हैं। चलिए, शादी हो गई, अब क्या हुआ? मुझे लगा रब्बे करीम की मोहब्बत मेरे दिल में हरान बढ़ती चली जा रही है। मुझे पहली बार किचन में खाना बनाना था। आप भी याद करें ज़रा, आप सब ने भी जब पहला ज़रदा पकाया था क्या बना था उसका? अब भी पकवाते हैं लड़कियों से मीठा? खाला आपने पकवाया अपनी बहू से? कैसी सास हैं आप, हैं? अमूमन मुझे याद है हमारी नानी के घर में जब बहुएं आती थी यानी मेरी मुमानियाँ, तो ये एक बड़ी ट्रेडिशन थी कि आज बहू ने पहली दफ़ा खाना पकाया, या हलवा बनता था या ज़रदा। वैसे खीर में इज्जत रह जाती थी, वो जो ज़रदा था वो तो पप्पा ही बन जाता था, इतनों की नज़रें लगी हैं और डरो हैं। लेकिन बहरहाल कहती हैं कि मुझे पहली बार किचन में खाना बनाना था। अगरचे वालदा की दी गई तरबियत में कमी किसी चीज़ की ना थी, कोई माँ नहीं कमी रखती, मगर यहाँ तो सब कुछ मुख्तलिफ था। ये भी लिख लें, ससुराल बहुत मुख्तलिफ होते। सगी खाला के घर चले जाएँ आप, सगी पुप्पी के घर चले जाएँ, क्योंकि ये दो करीब तरीन रिश्ते हैं ना, यकीन कीजिए बहुत फ़र्क होता है। ये अल्लाह ताला ने शायद हर घर का एक अलग सा, वो कहना चाहिए कि छोटा सा ब्रांड बना दिया कि दूसरा उस जैसा नहीं होगा। खैर, कहती है यहाँ का हर अंदाज मुख्तलिफ था, सब की निगाहें मुझ पर थी कि देखो आज क्या होता है। मैं घबरा गई, इसी लम्हे मैंने रब्बे करीम को पुकारा, ये सबक देकर भेजें बेटियों को। हम होते हैं उस वक्त तो माँ को फ़ोन करते हैं, अम्मी ये क्या कर दिया मैंने। अब तो बेटी होती ससुराल में और नज़रें फ़ोन पे या स्काइप पे और कैमरों पे होती हैं। यकीन करें ज़हनी तौर पे जो बच्ची अपने घर से बाहर निकल गई ना सफ़र में, वो उस घर में नहीं सेट होगी कभी। अभी भी मैं आपको कहूँ ना, आप साथ फ़ोन यूज़ कर लें, साथ अपने चुपके चुपके टेक्स्ट मैसेज देख लें, वल्लाही आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपके कान सुनेंगे लेकिन आप नहीं सुनेंगे। क्यों हम बार बार कहते हैं सेल फोन्स बंद कर दें, टेक्स्ट बंद कर दें, ताकि आप इस हॉल में रहें। जब आप इस कमरे से बाहर निकल गई तो आपकी सोच पता नहीं कहाँ भटक जाएगी, हो सकता है रात के मेहमानों के लिए आप कुछ देर में तैयार भी करने लग जाएं। खैर, कहती हैं कि मैंने उसी लम्हे अपने रब को पुकारा और कहा आज मेरी लाज रख लीजिए। मैं दुआएं मांगती जा रही थी और काम करती जा रही थी। मुझे लगा कोई मेरा हाथ थामे हुए है, जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़कर लिखवाती है, ऐसे मेरा हाथ पकड़कर मुझसे काम करवाया जा रहा है। मैंने घड़ी की जानिब देखा, बहुत कम वक्त में खाना तैयार था। मैंने जायका चखा, मुझे हैरत हुई, ऐसा खाना मैं बना सकती हूँ? यानी इतना मज़े का बना कि यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने बनाया। और जायका लाजवाब था। वजीहा के लब गोया सिल चुके थे, यानी अब दोस्त इतनी मुनहमिक है सुनने में कि बात ही नहीं कर पा रही बीच में कुछ। मेरी मोहब्बत इससे हैरान बढ़ती चली गई। मसाइल हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, मगर मुझे दरपेश मसला मुख्तलिफ नौयत का था और ठीक ठाक संगीन भी था। मुझे हिचकियाँ लेकर रोना पड़ा, मगर मैं सच कहूँ मुझे हर बार लगता जैसे मुझे बाकायदा किसी ने पकड़कर संभाल रखा है। कौन पकड़ता है, वो गिरने नहीं देता। फ़कद इस्तम सका बिल रोतल वस्का, अगर अल्लाह पे नज़रें लगानी सिखा दी आपने अपनी औलाद को और आपकी लग गई, वल्लाह ही आपको दुनिया के किसी बाज़ार में घाटा नहीं मिलेगा। किसी मैदान में जाएं, अल्लाह चाहेगा तो आपको दुनिया की भी इज़्ज़त मिलेगी, आखिरत भी आपकी होगी। ये कहती हैं कि मेरे हालात बड़े वर्स्ट हो गए। सभी के मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इस बच्ची के हालात काफ़ी मुख्तलिफ थे, लेकिन जो चीज़, जो हस्ती इसको उस वक़्त थाम रही थी, वो अल्लाह थी। माँ ने क्या करना है, तो बहन को क्या करना आता है, तो खाला, मामू, फुफ्फो, चचा क्या कर सकते हैं। हम इतने छोटे छोटे सहारों पे, इतने छोटे छोटे मोहरों पे नज़रें लगाते हैं और तभी तो फिर मुँह खाते हैं। लेकिन इसने जब अल्लाह से लगाया ताल्लुक़ की, अल्लाह ने इसकी बात कर दी। अच्छी हालात को काबू करने के हवाले से भी और अपनी ज़ात को काबू करने के हवाले से भी हर लिहाज से मुझे संभाला गया। क्या था वो मसला, वजीहा पूछती है, यानी दोस्त कहती है, भाई तुम्हें क्या इतना बड़ा मसला पेश आ गया कि तुम्हें उस वक़्त मुश्किल आई। मरियम ने सरसरी अंदाज में बतलाया। मसला सुनकर वजीहा परेशान हो गई, मगर यहाँ मरियम तसल्ली दे रही थी। यानी जब बच्चियों के हालात उनकी उम्मीदों से मुख्तलिफ हों तो उस वक़्त क्या कहना। कहती हैं कि मैं हर दफ़ा ये कहती थी, रदीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अपने रब की रज़ा पे राज़ी हूँ। अल्लाह ताला, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, बहुत राज़ी हूँ, और मुझे ज़ाते बारी ताला ने ये यकीन दे दिया कि वो मुझे इस मसले से भी फूलों की तरह गुजार देगा, इस रंज को भी खुशी में बदल देगा, इस मामले को भी ठीक कर देगा। मुझे यकीन कामिल है कि वो बेइंतहा फ़जल फरमाएगा, लिहाजा ला खौफ़ अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना कोई खौफ है ना कोई गम है। वजीहा पर एक बार फिर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। यानी अब दोस्त सुन रही है और मरियम बोलती है, सबसे मज़े की बात बताऊं, अम्मी की कॉल आई थी परसों, कह रही थी, ताहिरा भाभी बदल गई। ये बड़ी गौर से सुनिएगा बात, बच्ची अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा मामला कर रही है अल्लाह के लिए, उस नेकी का उसके मैके पे क्या असर पड़ता है, ये अब आप सुनेंगे। इसकी माँ इसकी भाभी यानी उस अपनी बहू का हाल सुनाती है, ताहिरा भाभी बदल गई हैं क्या। वजीहा का हैरत से आंखें फाड़ना बजा था, ताहिरा भाभी, वो हैरान थी, हाँ ताहिरा भाभी, मैं यहाँ अम्मी अब्बू यानी सास ससुर की खिदमत करती हूँ और दुआ मांगती हूँ। अब ये गौर से सुनिए, और ये जुमला वाकई दिल की तख्तियों पर लिखने वाला है। ए अल्लाह, मैं किसी के वालदैन के साथ हुस्ने सलूक कर रही हूँ, आप मेरे वालदैन पर रहमतों की बारिश बरसा दीजिए। यानी मेरी भाभी के दिल में मेरे माँ बाप के लिए खैर डाल दें। बूढ़े वालदैन की दिल आज़ारी से बचती हूँ, हर मुमकिन इनकी खिदमत करती हूँ, और कतन उम्मीद नहीं रखती कि इसका सिला यहाँ से लेना है। तो बस मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, यकीनन वो ऐसे ही नहायत करीब है दुआओं को सुनने वाला। यानी मैं अपने ससुराल वालों से अच्छा मामला कर रही थी और मेरी भाभी का मामला मेरे घर वालों से अच्छा होता गया। टिट फॉर टैट कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। कैसे इतना ज़र्फ के सिला भी नहीं चाहती, शुक्रिया के दो बोल से भी बेनियाज हो तुम। अब दोस्त का सवाल सुनो कि इतना कुछ करके तुम्हारा दिल नहीं करता तुम्हारी कोई तारीफ़ करे। ये भी अहम नुक्ता है। हम दूसरों के झूठे बोल सुनकर खुश हो जाते हैं और अल्लाह की सच्ची बात की तरफ ही हमारे कान कम ही उठते हैं। वजीहा दम बखुद थी, ज़र्फ़ की बात नहीं, बात ये है। अब ये भी बात सोने के पानी से लिखने वाली है। एक सिला वो है जो बंदे दे सकते हैं और एक सिला वो है जो अल्लाह देता है। ऐसे बंदे को आप कहाँ किस जगह जाकर हराएंगे। लोगों का सिला मापा जा सकता है, यू कैन मेजर इट, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता बेमिसाल होती है। मैं कम तर सिले की जानिब क्यों देखूं, बड़ा सिला क्यों ना मांगूं, लिहाजा मुझे इसी से, बस इसी से सिला दरकार होता है। ये नुक्ता समझे। देखिए कि कोई आपको कहे कि कोई भी कीमती चीज़, चलो दूध ही की मिसाल ले लें, जितना बड़ा बर्तन लेके आओगे उतना दूध फ्री, और आप एक गिलास ले जाएं और दूसरा उसकी जगह पे 5 लीटर की बाल्टी ले जाएं, किसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। बड़ी बाल्टी, बड़े बर्तन, तो ज़र्फ़ क्या होता है, बर्तन होता है। मुझे तो सच बताऊँ यही बात समझ आई है, सारी ज़िंदगी छोटे छोटे इंसानों में उलझते रहे हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी नाराज़गियाँ, उनकी खुशियाँ, उनकी रज़ा, उनकी नाराज़गी, और सबसे बड़ी हस्ती ऊपर हमारा इंतज़ार करती है कि फ़स्कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मेरी नाशुक्री ना करो, तुम मेरी कदरदानी करो, मैं तुम्हारा कदरदान हूँ। याद रखिए, आज हमने ये शिर्क समझा ही नहीं। आज जितनी नफसा नफसी आज हमारे अपने कल्चर में है, वल्लाही इतनी दूसरों में नहीं। नाम क्या मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसी भी पढ़ें, 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं। जुमे को मस्जिदों में रौनक होती है। हाँ, जुमरे पे जाने वालों की कमी आज तक मैंने नहीं देखी, चाहे जितना मर्ज़ी महंगा हो जाए और जितनी मर्ज़ी गर्मी सर्दी में हज आ जाए। लेकिन आज हमारी उम्मत, हमारे इस प्यारे मुल्क में रहने वाले लोगों का एक हिडन शिर्क, या कह लीजिए छुपा हुआ शिर्क, क्या है कि हम लोगों के लिए जीते हैं, हम लोगों से डरते हैं, हम लोगों की उम्मीदें रखते हैं, हम लोगों से सिला देते हैं। मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे बुलाया नहीं, मुझे घर आके काट नहीं दिया, मैं गया मुझे पूछा नहीं, मुझे दूसरों में एडमायर नहीं किया, सबको पूछ रही थी मुझे इग्नोर कर रही थी, मुझे पीछे डाल दिया, मेरे हाथ में फूल नहीं दिए, सास को मेरे हाथ से कड़े नहीं डलवाए, बारात के आगे मुझे क्यों नहीं खड़ा किया। वैसे कहते हैं कि बताल जद्दू का, नमाज में हम हर रकत नई रकत शुरू करते वक्त क्या कहते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, कि तेरा नाम बड़ा बरकत वाला है और तेरी शान बड़ी ऊंची है। और जाय नमाज तय करते सारी लड़ाइयाँ, सारे झगड़े, मेरी इज्जत, मेरी अना, मेरी जान, मुझे क्या समझा, हम ऐसे चले जाएं। आज तो हाल ये हो गया कि कोई शादी का कार्ड भी दे देना, ऐसे ही भेज दे किसी के यहाँ तो नहीं जाते, कहते टाल दिया, उस किसी के घर भेज दिया। अच्छा कोई पोस्ट में भेज दे, कहते लो डाकिये के हाथ भेज दिया, चलो भाई फटक्स के हाथ भेज दीजिए, वो ज़्यादा अच्छी कंपनी है, DHL पे भेज दीजिए, नहीं खुद क्यों नहीं आए। अच्छा बेचारे इतने कामों में से निकल कर आए, कहते आखिरी दिन आ गए, अब तैयारी कैसे करें, हम कहाँ तक इज्जत मांगेंगे। मैं अक्सर अपने इर्द गिर्द लोगों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये जी तो नहीं रहे, ये सिर्फ एक बेकार काट रहे हैं। आज ये टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह इसी सीरीज़ में आ रहा है एक टॉपिक जिसमें हमने ख़ास तौर पे इस पे बात करनी है कि नो कहना सीखें। आज यकीन करें जान बलब है, हलक में कांटे चुभ रहे, नो नहीं कह पाते, रस्मों को भी नहीं नो कहते, लेन देन पे नो नहीं कह पाते, और जो हमारी ज़िंदगी जीरन है, मुझे तो लगता है फांसी के फंदे में फंसे हुए हैं। सब रो रहे हैं लेकिन किसी में जुरत नहीं है कि ज़रा सा उसे जान छुड़ाए। जब अल्लाह पे नज़रें होती हैं ना, तो इंसान अपनी ज़िंदगी को इतना सस्ता तो नहीं बेचता।